रॉयल गार्डर्स विशाल को लेकर एक पुराने से खंडहर में गए और वहां पर विशाल की बहुत बुरी तरह से पिटाई की। विशाल दर्द से तड़प रहा था, उसका पूरा मुंह कट गया था। उसके हाथ पैरों में कई जगह चोटों के निशान आए थे। रॉयल गार्डों ने विशाल को वहीं पर एक कुर्सी से बांध दिया था। विशाल के शरीर से घिरे हुए खून से वहां का पूरा फर्श लहूलुहान हो गया था। उस खंडहर की आभा उस समय बहुत डरावनी महसूस हो रही थी। वहां पर अक्सर ही लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, क्योंकि वहां पर उन लोगों को सजा दी जाती थी जो आस्तिक के खिलाफ साजिश रचते थे। विशाल की इतनी ज्यादा पिटाई से उसका पूरा चेहरा सूज गया था और उसके शरीर पर कई काले और नीले निशान आ गए थे। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थीं, जैसे किसी भी पल वो बेहोश हो जाएगा। दो रॉयल गार्डर्स विशाल के बगल में खड़े थे और उसे होश में रखने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं पर कुछ गार्डर्स दरवाजे के पास खड़े थे और कुछ उस जगह की निगरानी कर रहे थे। तभी अचानक से वहां का दरवाजा खुला और आस्तिक अंदर आया। आस्तिक की वो भयंकर आभा उस जगह को और ज्यादा भयंकर बना रही थी। आस्तिक अभी भी अपनी शादी की शेरवानी में था। आस्तिक किसी शेर की तरह चलते हुए विशाल के पास आया। एक गार्ड जल्दी से आस्तिक के सामने कुर्सी लाकर रखता है और आस्तिक उस कुर्सी पर बैठ जाता है। वो अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाकर बैठता है, बिल्कुल राजा की तरह। उसके दोनों हाथ सामने की तरफ तने हुए थे और आस्तिक ने बहुत ही शांत स्वर में विशाल को देखकर कहा, अरुणिमा से तुम्हारा क्या रिश्ता है? विशाल बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए आस्तिक को देखता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और उसने बहुत मुश्किल से अपने शब्दों को संभालते हुए कहा, अरुणिमा। उसने सीधे तरीके से कभी मुझसे ये नहीं कहा कि वो भी मुझे पसंद करती है, लेकिन वो करती है। जैसे ही विशाल के शब्द पूरे होते हैं, उसके गले पर एक तलवार जाकर लग जाती है, जो एक रॉयल गार्ड ने विशाल के गले पर लगाई थी। विशाल हैरानी से और डर के मारे उस तलवार को देखने लगता है। आस्तिक गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है, झूठ मत बोलो, अगर सच कहोगे तो छोड़ दूंगा, और अगर झूठ कहोगे तो अभी इसी वक्त तुम्हारे सर को तुम्हारी धड़ से अलग कर दिया जाएगा। विशाल का पूरा चेहरा डर से भर गया था। ये तलवार उसके गले पर लगी हुई थी, मतलब एक और शब्द और विशाल अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। लेकिन उसने आस्तिक को देखा और डरते हुए स्वर में कहा, राजा साहब, आपको लगता है मौत के दरवाजे पर खड़े होकर कोई इंसान झूठ बोल सकता है, वो भी आपसे? अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो मैं आपको सबूत दिखा सकता हूँ। मेरा फोन देख लीजिए, उसमें आपको सारे सबूत मिल जाएंगे। आस्तिक ने अपना एक हाथ उठाकर एक गार्ड को इशारा किया। वो गार्ड जल्दी से जाकर विशाल का फोन लेकर आता है। आस्तिक विशाल के फोन की गैलरी ऑन करता है और उसमें देखने लगता है। जैसे जैसे वो गैलरी के फोटोज को स्क्रॉल कर रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे पर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आस्तिक ने अपना फोन निकाला और उन फोटोज को अपने फोन में ट्रांसफर कर दिया। एक बार सारी फोटो ट्रांसफर होने के बाद आस्तिक ने विशाल का फोन दीवार पर दे मारा, जिससे उसका फोन कई टुकड़ों में बिखर गया। आस्तिक ने गुस्से में विशाल को देखते हुए कहा, ये मत समझना कि ये तस्वीर दिखाकर तुम कुछ साबित कर लोगे। विशाल ने अपने होश संभालते हुए कहा, राजा साहब, मुझे कुछ भी साबित नहीं करना है। मुझे पता है कि अरुणिमा अब मेरी कभी नहीं हो सकती है, लेकिन मेरे लिए बस इतनी ही तसल्ली काफी है कि अरुणिमा के दिल के किसी कोने में मैं बसा हुआ हूँ। मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, बस इसीलिए अरुणिमा ने मेरा प्यार नहीं अपनाया है। और आप राजा हैं, इसीलिए तो एक बार आपके कहने पर उसने आपसे शादी तक कर ली। आस्तिक वैसे ही अरुणिमा से नफरत करता था और विशाल की इन बातों ने उसकी नफरत की आग में और घी का काम कर दिया। आस्तिक गुस्से में विशाल को देखते हुए चिल्लाता है, स्वप्निल। स्वप्निल रॉयल गार्डन्स का हेड था। स्वप्निल जल्दी से राजा साहब के पास आता है और अपना सर झुकाते हुए कहता है, जी राजा साहब। आस्तिक विशाल को घूरते हुए देखता है और कहता है, मेरे लिए तुम्हारी वफादारी क्या है? स्वप्निल कहता है, राजा साहब, आप मेरे मालिक हैं, मैंने आपका नमक खाया है, आपके हुक्म पर मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ और आपके एक हुक्म पर मैं किसी की जान ले भी सकता हूँ। स्वप्निल के ये कहते ही आस्तिक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो कहता है, अच्छा, मुझे तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी। अगर तुम्हारी वफादारी मेरे लिए इतनी है तो मेरे परिवार वालों के लिए कितनी होगी? स्वप्निल ने कहा, राजा साहब, अगर किसी ने आपके परिवार पर आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। आस्तिक ने कहा, तो ये आदमी अभी तक जिंदा क्यों है जिसने तुम्हारी रानी साहिबा के बारे में इतनी बकवास की है? क्या तुम्हें लगता है इसे जीने का हक है? स्वप्निल कहता है, जी नहीं राजा साहब, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आप महल पहुंचिए, आपके महल पहुंचने से पहले इसकी मरने की खबर पहुंच जाएगी। आस्तिक डेविल स्माइल के साथ विशाल को देखता है, जिसके चेहरे पर डर की लकीरें साफ साफ नजर आ रही थी,
और उसे देखते हुए आस्तिक वैसे ही शैतानी मुस्कान के साथ वहां से चला जाता है। आस्तिक के जाते ही वहां का दरवाजा फिर से बंद हो जाता है और अब रॉयल गार्डों ने विशाल को चारों तरफ से घेर लिया था। विशाल के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था और जैसे जैसे स्वप्निल विशाल की तरफ बढ़ रहा था, विशाल को पता चल गया था कि उसका अंत आ चुका है। अब वो कुछ भी कर ले, यहां से बच के नहीं जा सकता है। विशाल ने अपने मन में कहा, अरुणिमा अब मुझे परवाह नहीं अगर मैं मर भी जाऊं तो, लेकिन मैंने वो आग लगाई है जो तुम्हें जिंदगी भर चैन से नहीं जीने देगी। तुम मेरी नहीं हुई, लेकिन तुम अब अपने पति की भी नहीं बनोगी और सारी जिंदगी तुम्हारा पति तुम्हारा नाम मेरे साथ जोड़ता रहेगा। तुमने मेरे प्यार को ठुकराकर राजा साहब से शादी की है ना, तो अब देखो अरुणिमा, तुम सारी जिंदगी अपने पति का प्यार हासिल नहीं कर पाओगी। अलविदा अरुणिमा। और फिर उसके बाद उस खंडहर से कान फाड़ देने वाली दर्दनाक चीखों के अलावा और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था।